हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 69। आदित्य और सुनैना एक दूसरे में खोए हुए थे। वे एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आदित्य सुनैना के गाल पर किस करता हुआ उसके कंधे और पीठ के खुले हुए हिस्से को भी किस कर रहा था। तभी सुनैना उसके सीने से चिपक गई और उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोली, यू लव मी ना? सुनैना की बात सुनकर आदित्य उसे किस करते हुए रुक गया। उसने उसके दोनों कंधे अपने हाथों से पकड़कर उसे थोड़ा दूर किया और हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखने लगा, जैसे उसे सुनैना से इस बात की उम्मीद नहीं थी। व्हाट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई वॉज जस्ट। आदित्य की पकड़ सुनैना की कमर और चेहरे पर ढीली पड़ गई। वह अपने हाथ पीछे करने लगा। जिस तरह से तुम मेरे करीब आते हो, मेरी आंखों में देखते हो, और तुम्हारे नज़दीक आने से मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें बेतरतीब हो जाती हैं, आंखें बंद करके भी पहचान सकती हूँ मैं तुम्हारा एहसास और तुम्हारी छुअन को। सुनैना आदित्य का हाथ पकड़कर वापस अपने कंधे और कमर पर रखती हुई उसकी आंखों में देख कर बोली, मैं तो बस तुम्हें परेशान, मेरा मतलब है, मुझे लगा था कि अगर मैं इस तरह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझे खुद से दूर करोगी, लेकिन तुम तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ही मुझसे प्यार हो गया हो? आदित्य ने सुनैना की बात का जवाब देते हुए बात को अलग ही दिशा में ले जाते हुए कहा, ताकि सुनैना का ध्यान प्यार वाले विषय से हट जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम अपनी ये ड्रिंक करने की आदत छोड़ दो और मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो तो। सुनैना मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली और अपने चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करने लगी। उसे ऐसा करते देख आदित्य भी ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अभी अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर इतना करीब क्यों आने देती हो मुझे अपने? वो तो इसलिए क्योंकि तुम मेरे पति हो, शादी हुई है ना हमारी, तो तुम्हारा तो हक बनता है मेरे करीब आने का। और बोलते बोलते जब सुनैना को समझ में आया कि उसने क्या बोल दिया तो अपनी जीभ दांत से काटती हुई वो चुप हो गई और नीचे फर्श की तरफ देखने लगी। अच्छा, सिर्फ पति हूँ इसलिए, हाँ, और बाकी कुछ नहीं? हल्का सा मुस्कुराते हुए आदित्य झुककर सुनैना की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोला। सुनैना के चेहरे पर भी हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह उसे आदित्य से छिपाने में कामयाब रही। यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, या सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ इसलिए ही करीब आते हो मेरे इतना? और प्लीज झूठ मत बोलना, कमॉन, तुम्हारी आंखों में दिखता है और तुम्हारी हर एक कदम में जो तुम मेरी तरफ लेते हो। सुनैना जानबूझकर आदित्य की आंखों में झांक कर देखते हुए बोली। आदित्य उसकी नज़रें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने कहा ना, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करता हूँ, ताकि तुम मुझसे और कुछ ना पूछो जो पूछकर तुम मेरा दिमाग खराब करती रहती हो, बस इसलिए। मैं तो फिर भी पूछूंगी, बताओ मुझे, आखिर कौन हो तुम आदित्य? क्या हो तुम? क्यों हो इतने रहस्यमयी? क्यों हर चीज सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हो? क्यों नहीं मुझे खुद में पूरी तरह से शामिल करने के लिए तैयार हो तुम? यकीन नहीं करते हो ना मुझ पर बिल्कुल भी? सुनैना ने आदित्य की शर्ट का कॉलर अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा। यकीन, कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब टूट जाता है तो इतना ज्यादा बिखर जाता है कि अरसे लग जाते हैं समेटने में, और तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में शामिल हो, मुझ में नहीं। आदित्य चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ सुनैना की तरफ देखते हुए बोला और अपनी शर्ट के कॉलर पर कसे हुए सुनैना के हाथों को धीरे से हटाने लगा। हाँ तो जिंदगी में ही सही, लेकिन ये फैसला तो तुम्हारा था ना, तो अब क्यों दूर भागते रहते हो मुझसे? एक बार यकीन करके तो देखो, तुम्हारा यकीन कभी टूटकर बिखरने नहीं दूंगी मैं। आदित्य की बातें सुनकर सुनैना को समझ में आ रहा था कि कुछ हुआ है आदित्य के अतीत में जो उसे ऐसा बनने पर मजबूर करता है। असल में आदित्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह जरूर किसी बहुत बड़े दर्द और तकलीफ से गुजरा है। ये सब सोचकर सुनैना भी काफी भावुक हो गई और आंसू भरी आंखों के साथ आदित्य की तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है, बता दूंगा जब सही वक्त होगा, लेकिन क्या तब तक तुम ऐसे ही मुझ पर भरोसा कर सकती हो? सुनैना को इस तरह देख आदित्य को काफी तकलीफ हुई। वह उसे मना करके इग्नोर या वहाँ से नहीं जा पाया, इसलिए उसे तसल्ली देते हुए बोला। सुनैना भी उसकी बात मानकर हाँ में अपना सिर हिलाती हुई बोली, मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल और दिमाग दोनों ही तुम पर अटके हुए हैं, और ना चाहते हुए भी मैं भरोसा करती हूँ तुम पर आदित्य। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो इंतजार करूंगी मैं तुम्हारे उस सही वक्त का। थैंक यू सो मच मेरी बात और स्थिति समझने के लिए। सुनैना की बात सुनकर आगे बढ़कर उसके माथे पर किस करते हुए बोला। सुनैना अपने मन ही मन उसकी तरफ देखते हुए खुद से बोली, मैं तो तुम्हें भी पूरी तरह से समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम मौका दो तब ना। क्या हुआ, अब इस तरह से क्यों देख रही हो? सुनैना को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आदित्य ने आंखों से इशारा करते हुए उससे पूछा, क्यों देख नहीं सकती क्या अपने ऑफिशियल हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड को? आदित्य के इस तरह पूछने पर सुनैना उसे थोड़ी सी मस्ती और शरारत भरे अंदाज में जवाब देती हुई बोली, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी डिनर टाइम है, चलो भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? आदित्य ने बात बदलते हुए सुनैना से कहा। सुनैना को काफी अच्छा लगा और थोड़ा अजीब भी। इतने दिन हो गए, आज पहली बार आदित्य ने उसे डिनर या खाना खाने के लिए कहा था। सुनैना मन ही मन बहुत खुश हो गई और तुरंत ही आदित्य के साथ खाना खाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह अभी तक अपने दिन के कपड़ों में ही थी, इसलिए आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बस चेंज कर लूँ, तुम चलो जब तक तुम्हें आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट करूँगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सुनैना से कहा और कमरे से बाहर जाने लगा। दूसरी तरफ सुनैना अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में जा रही थी। वह मन ही मन ये सोचकर खुश थी कि चलो उन दोनों का रिश्ता कुछ नॉर्मल तो हुआ। आज पहली बार उन दोनों ने किसी भी चीज को लेकर इतनी बातें की थीं। उससे पहले आदित्य का उसके करीब आना और उसे इस तरह प्यार से किस करना, वो सब याद करके भी सुनैना के मन में गुदगुदी हो रही थी और वो कुल मिलाकर इस वक्त काफी ज्यादा खुश थी। पार्ट वन। दूसरी तरफ नैना सारा दिन नकुल के साथ उसके डिजाइनिंग हाउस में बिताकर थक गई थी। रात के इस वक्त नकुल उसे उसकी बिल्डिंग के नीचे तक छोड़कर चला गया था। वह अपने फ्लैट में वापस आकर अपने लिए कॉफी बनाकर बैठी हुई थी। रात का डिनर भी उसने नकुल के साथ उसकी कंपनी के कैंटीन में ही कर लिया था, इसलिए नैना को अब भूख भी नहीं लगी थी। लेकिन नकुल की कंपनी का मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने से नैना काफी ज्यादा खुश थी, साथ ही ये सोचकर भी कि चलो उसके सारे पैसे खत्म होने से पहले ही उसे दूसरा काम मिल गया। लेकिन साथ ही वह नकुल की थोड़ी ज्यादा एहसान मंद भी हो गई थी कि आखिर कोई उसके ऊपर एक के बाद एक कितने सारे एहसान करता जा रहा है और कैसे वह उसके एहसान चुका पाएगी। लेकिन नहीं, नकुल को भी तो इस वक्त मेरी जरूरत है, मतलब उसकी मॉडल की इस तरह अचानक बीमार हो जाने की वजह से किसी न किसी को तो उसे अपने न्यू कलेक्शन के लिए साइन करना ही था। और फिर नकुल और तान्या ने नैना में भी कोई ना कोई टैलेंट और पोटेंशियल तो देखा ही होगा, या फिर उसका लुक उनके कलेक्शन के हिसाब से परफेक्ट होगा, तभी तो उन्होंने उसे इसके लिए कंसिडर किया। नैना अपने दिमाग से नकुल के एहसान वाली बात निकालने के लिए नैना खुद ही से ये सारी चीज़ें सोच रही थी और खुद को समझा रही थी कि ये बस एक वर्क अपॉर्चुनिटी है। तो क्या हुआ अगर वो नकुल को पहले से जानती है, लेकिन इस बार नकुल उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि अगर नैना को काम की ज़रूरत है तो उनको भी तो अपने कलेक्शन के लिए मॉडल की ज़रूरत है। तो अगर वे दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं तो फिर इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आएगी बीच में? नैना ने खुद को ये सब समझाया और फिर उसे तरुण मित्तल का वो ऑफर भी याद आने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ इतनी बड़ी फिल्म के लिए साइन होने वाली थी और वो अब फिर से उसी जगह पर है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, मतलब मॉडलिंग असाइनमेंट। वैसे तो ये असाइनमेंट भी उसके लिए पहला ही था, लेकिन अगर किसी फिल्म में ही वो कास्ट हो जाती तो उसकी एक अलग ही नाम और पहचान बनती। लेकिन उसके लिए उसे उस तरुण मित्तल जैसे? नहीं नहीं नैना, तू पागल हो गई है क्या? ये सब क्या सोच रही है? तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू जितना भी नाम कमाएगी अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर। इस तरह किसी के साथ रात बिताकर तुझे काम लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात फिल्म के ऑफर की, तो आज नहीं तो कल वो भी मिल जाएंगे। तरुण मित्तल के ऑफर को मानने के ख्याल को अपने मन में आते ही नैना तुरंत खुद को डांटते हुए और अपने दिमाग से वो ख्याल झटकते हुए बोली, मुझे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी नहीं सोऊंगी तो सुबह चेहरा फ्रेश नहीं लगेगा और कल मेरा फोटोशूट भी तो है और मुझे टाइम पर नकुल के डिजाइनिंग हाउस पहुंचना है। बोलते हुए नैना ने जल्दी से अपनी कॉफी खत्म की और सोने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन काफी देर तक लेटे रहने के बाद भी नैना को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने स्लीपिंग पिल्स ले ली, क्योंकि इस तरह देर तक जागते रहने पर उसके दिमाग में फिर से वही सारे ख्याल आ रहे थे जो इतनी देर से उसके मन में चल रहे थे और वो अब और इस बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए वो नींद की गोली खाकर आंखें बंद करके लेट गई और दवा के असर से उसे नींद आ गई। आदित्य का विला। सुनैना और आदित्य ने साथ में डिनर किया, फिर डिनर करने के बाद एक साथ ही रूम की तरफ जाने लगे। लेकिन आदित्य हमेशा की तरह रूम में जाने के बजाय स्टडी रूम में जाने लगा। उसे स्टडी रूम की तरफ जाता हुआ देख सुनैना अपने मन में सोचने लगी कि जरूर ये ड्रिंक करने के लिए स्टडी रूम में जा रहा होगा, इसलिए सुनैना भी उसके पीछे ही उसके स्टडी रूम में आने लगी। तो आदित्य उसकी तरफ घूमकर देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ काम है क्या स्टडी रूम से? काम वाम तो कुछ नहीं है, बस तुम पर नजर रखनी है। आदित्य के इस सवाल पर नैना मन ही मन खुद से बातें करती हुई बोली, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? सुनैना के इस तरह चुपचाप बिना कुछ बोले खड़े रहने पर आदित्य उससे दोबारा पूछता हुआ बोला, नहीं कुछ नहीं, और काम, मुझे क्या काम, मुझे तो पढ़ाई ही, वो तुम्हारे स्टडी रूम में कोई बुक होगी क्या? रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगी। सुनैना को कोई और बहाना नहीं सूझा तो वो यही बोलती हुई आदित्य से पहले ही स्टडी रूम के अंदर चली गई। उसके पीछे मुस्कुराकर अपना सिर हिलाता हुआ आदित्य भी स्टडी रूम में आ गया। क्रमशः